पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
पलवल के आसपास के क्षेत्र के लोग पलवल को परवर बोलते हैं, परवर, और दलिये को दरिया बोलते हैं, दरिया, रह को दय बोलते हैं। तो ये इस आधार से करियम है। अब ये स्पष्ट हो गया तो पुण्यात्माओं, दास को वो मूल ज्ञान प्राप्त है और इस मूल ज्ञान को जिस दिन से दीक्षा देना शुरू किया उसी दिन से ये यही मंत्र दे रहा है, यही ज्ञान बता रहा है। आज सभी सहयोगी सदग्रंथ उन महापुरुषों के अमृतवाणी भी आज समर्थन दे रही हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही चल रहे हैं। ये ज्ञान अभी तक छुपाना अनिवार्य था, उन महापुरुषों को सख्त निर्देश थे भगवान के और वो दृढ़ भगत थे, वो सच्चे भगत थे भगवान के, तो उन्होंने उस बात को दृढ़ता से पालन किया। नानक साहिब जी ने अपने पुत्रों को भी ये नाम नहीं बताए, केवल यही मंत्र बताए थे जो उन्होंने फिर आगे चल के छोड़ दिए, इस कारण से कि ये तो इंद्र मां विष्णु महेश की पूजा ये हम नहीं करेंगे, ये पूजा नहीं है। यही बात भी गड़ रही है क्योंकि हमें ज्ञान तो रहा ही नहीं। और इसके साथ साथ धर्म यज्ञ भंडारे शुरू करवाए थे। नानक साहिब जी के पास जब कोई संगत आती थी ये स्वयं ही सबको भंडारा कराते थे, अपने खेतों में काम करते थे। लास्ट के 16 वर्ष ये अपने घर पर रहे, खेतों में कार्य जैसा कर सकते थे वो करते थे, भक्ति भी करते थे, आने वाले को उपदेश भी देते थे। तो ये इन्होंने इसलिए गुप्त रखा कि ये बताना नहीं किसी को, नहीं तो काल के दूत जैसे राधा स्वामी पंथ, ये दन दन सतगुरु पंथ, सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाली, जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, आगरा वाला, ब्यास वाला राधा स्वामी, ठाकुर जी वाला राधा स्वामी, ये सब नकली पंथ हैं, इनके पास ये दो अक्षर का मंत्र नहीं है, आदि नाम इनके पास नहीं। जैसे घट रामायण के अंदर तुलसी साहिब जी ने लिखा, हाथरस वाले ने, के 500 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो, 500 नाम काल जी वाख्या, छठवा नाम गुप्त कर रख्या। फिर बताया कि सत नाम ले सतलोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। अब सतनाम तो ये दो अक्षर का, सतनाम ये दो अक्षर का, जो अभी आपको नानक साहब जी के और मर्दाना और बाला की वार्ता में आपको बताया, ये है सतनाम दो अक्षर का। और इसके आसपास भी नहीं है, ये सचखंड के गीत गाने वाले राधा स्वामी वाले पंथी, यानी इस विश्व में कोई भी इस मंत्र से परिचित नहीं। पुण्यात्मा इस दास के अतिरिक्त ये सत्कर मान लेना तुम, और कोई अधिकारी नहीं। यदि किसी से ज्ञान हो जाते अधिकारी नहीं देने के, इसलिए परमात्मा ने इन काल के दूतों से इसे बचाए रखने के लिए। अगर गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिख दिया जाता तो महापुरुषों ने जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को बनाया, सब वाणियों का, पवित्र अमृतमणि वाणियों का संग्रह किया, उस समय इन्होंने इस बात को मध्य नजर रखा कि कहीं ये ओम सोहम का मंत्र, सतनाम दो अक्षर का और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया
आने वाले भक्त इसको पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से ये हानि को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे मर्दाना के साथ कैसी भयंकर दुर्घटना होगी थी, वो मौत को प्राप्त हो गया था। तो इस मद्देनजर से उन्होंने जहां पर भी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर नानक साहिब जी की वाणी में ये मंत्र था, निकाल दी वह वाणी, नहीं रखी ग्रंथ साहिब में। इसके लिए नानक साहिब जी ने एक अच्छा प्रयत्न किया कि एक प्राण संगली बनाई और उसको एक राजा के पास सुरक्षित रख दी कि आप इसको सुरक्षित रखना और मेरा कोई सिक्खा हुआ उसको देना, नहीं तो किसी आम व्यक्ति के हाथ ना लगने देना, ये मेरी आत्मा है, आने वाले जीवों के लिए उद्धार होगा संसार से पार करने का, इसमें एक बहुत अच्छा मार्ग मैंने लिखा है, आम व्यक्ति के ये हाथ नहीं लगना चाहिए। अपनी आत्मा फिर दिखाते हैं आपको थोड़ा सा रिहर्सल कि ये प्राण संगली जो है नानक साहिब जी ने लिखी और एक राजा के पास सुरक्षित रख दी। मर्दाना डूब गया होता इस मंत्र का जाप करने से। इस बात को मद्देनजर रखते हुए प्राण संगली को भी जल प्रवाह कर दिया गया था अर्जुन देव जी के द्वारा, जो गुरु अर्जुन देव जी थे पांचवें, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सब वाणियों को इकट्ठा करके जलद बना दिया, उसमें इसको भी जल प्रवाह कर दिया था। देखिएगा अब इस पवित्र ग्रंथ के बारे में क्या कहा श्री नानक साहिब जी ने प्राण संगली के बारे में। देखिएगा ये भाग एक है प्राण संगली प्रथम भाग, श्री गुरु नानक साहिब विरचित प्राणों का अपूर्व कवच जो सूरत शब्द योग साधना में अमोघ तारों से रचा हुआ, काल कर्म का कृत विद्वानों के गुरुमुखों का सुरक्षित का हितकारी, जिसको गुरुमुखी अक्षरों में गुरुमुखी अक्षरों से भाषा अक्षरों में षटीपण तैयार करके गुरु साहिब के संक्षिप्त जीवन चरित्र समेत संत संपूर्ण सिंह ने प्रेम प्रसाद रूप से अर्पण किया, जिसके मालिक वेलविडियर प्रेस इलाहाबाद ने अपने खर्चे से अपने यंत्रालयों में प्रकाशित किया। ये यहां से छपी, इसके देखना आवश्यक सूचना में गुरु नानक साहिब ने यह अपूर्व ग्रंथ प्राण संगली किस अवसर पर सिंगल द्वीप में वहां के परम भक्त राजा शिवनाभ जी को उपदेश करके बख्श दिया और फिर उनकी पांचवी गद्दी के अधिकारी यानी गुरु अर्जुन देव जी ने, नानक साहिब जी की पांचवी गद्दी के अधिकारी गुरु अर्जुन देव जी ने उसे कैसे सिंगला द्वीप से मंगवाया तथा किस कारण से उसे गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह से अलग रखा, इसका वर्णन गुरु नानक साहिब के जीवन चरित्र में दूसरी यात्रा के आखिर के हिस्से में और टिप्पणी और टिप्पणकार के निवेदन में लिखा है। गुरु नानक साहिब ने इस अनमोल ग्रंथ का नाम प्राण संगली क्यों रखा, ये तो पक्के तौर पर वही कह सकता है जिसकी गति उन किसी हो। कहते इसका नाम प्राण संगली क्यों रखा, इसके बारे में तो ही बताओगा जो नानक जी जैसा इन सदग्रंथों के गुण रहस्य से परिचित हो, उन किसी उसकी गति हो तो भी कुछ लखावा उसका उनके उस वचन से होता जो निज मुख से नानक साहिब ने बोले हैं, जो उन्होंने राजा शिवनाभ से कहा था, ई ग्रंथ मेरी देह है। नानक साहब जी कहते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरा सथूल रूप समझना, पुराणों मेरियों का संग्रह कहो कवच है, जगत समुद्र का ये पुल है यानी संसार से पार होने का, इसमें सही मार्ग लिखा मैंने, और ई प्राण संगली मैं तैनू बख्शी है, ई अजर वस्तु है सोते ही जरी है, यानी तू इसका अधिकारी है, तेरा विश्वास हुआ इसका मेरे इस ज्ञान का, इसलिए मैं तुझे बकस दी है। ई प्राण संगली अमृत प्रवाह है, तेरे ही मुख विखे प्रवेश हुई है और तीन लोका विच इस वस्तु नु संभालता कोई नहीं, ताते प्राणों विखे प्राण संगली रखनी। इस वचन से स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ प्राणों का संग्रह रूप है। अब इन्हें पता नहीं प्राण माने श्वासों का श्वास, और ये मंत्र जो ओम सोहम यानी सतनाम दो अक्षर का, ये श्वासों से सिमरण होता है, इसकी विधि है जिसको प्राप्त दास से उसको खूब पता है। और नानक साहब ने खूब लिखा था इसमें, जिसमें प्राण पिंड का निर्णय, तो लेखक की बात है, प्राणों में मन के निरोध का पूरा भेद लिखा है। संभव है इसको गुरु ग्रंथ साहिब की जिल्द में शामिल ना करने की वजह यही हो कि गुरु अर्जन देव जी ने समय अनुसार इसे हरेक छोटे बड़े की दृष्टि में लाना उचित न समझा। अपने आत्मा अर्जुन देव जी ने किस दृष्टिकोण से इसको छोटे बड़े की नजर से बचाया कि उसमें यो मंत्र लिखा था दो अक्षर का, जो नानक साहब जी जाप करके मोक्ष को प्राप्त हुए, और वहां झटका देना जरूरी था, नहीं तो यो काल के दूता का हाथ लग जाता पूरा सिख समाज इसका जाप करता। ये जो दूसरे नकली पंथ ये भी नुके थे, हमने भी हम भी, क्योंकि बिना पूर्ण गुरु से ये प्राप्त हुए बिना काम नहीं कर सकता। नो तो इसमें पढ़ कर कोई भी जाप देने लग जाए उसे कोई लाभ नहीं हो सकता, वो तो नकली पासपोर्ट बनाएगा। तो इन नकली पंथों जो काल ने कहकर चलाए थे कि मैं नकली पंथ लाऊंगा, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, द्वादश पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समोई। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया, बल्कि इसको दरिया में प्रवाह कर देना उचित समझा, कहीं कोई पढ़ ले कोई देख ले गुरु जी की आज्ञा का अवलिघना हो जाए। देखना इसी के निवेदन में आपको दिखाता हूं, ये वही प्राण संगली है हम पढ़ रहे थे। अब ये तो आपने पढ़ा था आवश्यक सूचना, अब ये है निवेदन तुरंत ही। श्री गुरु नानक साहिब के पंचम स्थान पर श्री गुरु अर्जन देव जी हुए हैं, जिन्होंने गुरुवाणी की बीड बांधते समय, यानी सभी वाणियों को इकट्ठा करके गुरु ग्रंथ साहब का जब रूप दिया, उस समय पैड़ा नामक एक शिष्य को सिंगला दीप भेजकर राजा शिवनाभ के पौत्र, शिवनाभ तो रहा नहीं था उसका पौत्र था पोता, के पास यह ग्रंथ मंगवाया था, ये प्राण सिंगली मंगवाया था, जिसे किसी कारण विशेष से गुरु ग्रंथ साहिब की बीड में रखना उचित न समझकर सर्वथा जल प्रवाहित कर दिया था। सारा का सारा जल में प्रवाहित कर दिया था, डाल दिया था, जो कि एक परम प्रेमी साधु की अत्यंत प्रार्थना से द्रवीभूत हुए गुरु साहिब के वचन अनुसार जल से निकलवाया, यानी यू तो डाल दिया था उसमें जल में, किसका कति नामो निशान मिटा दूं, कि दे गुरु जी की अवहेलना हो जाए, दो अक्षर के मंत्र को कोई जाप कर ले वे। फिर यू कहते हैं किसी साधु की प्रार्थना से द्रवीभूत होकर, यानी पिंगल के गुरु अर्जुन देव जी ने उसे कह दिया कि चल निकाल ले, और वैसा ही निकलवाया, और जैसा का तैसा उसे ही बख्शीश कर दिया। अर्जुन देव जी ने उसी को कह दिया तू ले जा इसने, दिखाइए मत किसी ने। जिसका प्रसंग गुरु प्रताप सूरज प्रकाश नामक प्रमाणिक इतिहास की तृतीय राशिगत 32वें अंशु में लिखा है। अपने आत्माओं इस प्राण संगली के अंदर 160 अध्याय थे, ये भी आपको बताता हूं। ये प्राण संगली है और ये डॉक्टर जगदीत सिंह खानपुरी द्वारा इसका संपादन है, ये है पब्लिकेशन ब्यूरो पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से। अब इसकी भूमिका में लिखा है, देखिएगा ये भूमिका में लिखा है, पहला संस्करण है, पहला संस्करण। इसमें क्या लिखा है कि प्रस्तुत प्राण संगली दा प्रकाशित रूप है योग अते विशेष तौर ते हठ योग अनुसार प्राणायाम दा, यही ना अपनी तरफ से लिखा है इसका, जो भी सोचा इसको। इसमें क्या लिखा है ये, अब हम भूमिका हम देख रहे हैं, भूमिका देखें इसकी, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि संत संपूर्ण सिंह ने, जिसको हिंदी वाला आपने पढ़ा, संत संपूर्ण सिंह ने देवनागरी लिपि विच इस संस्करण दा प्रकाशन कीता, उस बीच कुल 80 अध्याय शामिल हन और 80वें अध्याय के अंत ते इस दे कुल अध्याय 113 लिखे हन और इस संख्या दी पुष्टि जन्म साखियां तो भी होंदी है पर संत संपूर्ण सिंह ने 160 अध्याय दे होने दी संभावना वल संकेत किया है। अब कहने का भाव ये है कि इन में से जो मूल थे वो निकाल दिए जिनमें कंसेप्ट क्लियर था ये इस सतनाम के बारे, फिर भी इसमें बहुत स्थानों पर जैसे आपको सुबह भी दिखाया था फिर दिखाते हैं ये प्राण संगली भाग दो के 103 पृष्ठ पर ये मंत्र स्पष्ट है लेकिन इनसे गलती से रह गया यो इनका समझ मना आया यो के लिखा यहां पर ये देखिएगा ये प्राण संगली हिंदी वाली है द्वितीय भाग और इसके संपादक है वो संपूर्ण सिंह जिसका पंजाब यूनिवर्सिटी वाली से भी संपर्क है ये है संपूर्ण सिंह भाषा टीकाकार संपूर्ण सिंह तरन तारण पंजाब से इसके 103 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं ये 103 पृष्ठ पे है राग भैरव है ये मेला पहले का इसके अंदर यह देखना कहते हैं साध संगत मिलिया मनमाना और ना मैं ना ओम सोहम जाना ये ना इसके साथ लगना चाहिए ना है यो ना माने नाम होता है कहते हैं ना तेरा के ना है हमारी देसी भाषा में अपने लैंग्वेज में पंजाबी में भी ऐसे कहते हैं की ना है तेरा तो नाम में नामों में नाम नामों में नाम है ओम सोहम ये जाना ये असली मंत्र है। अब जैसे यहां देखना 151 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं 150 पृष्ठ पे देखना इसके पे ये ओम मंत्र है ओम दर ओम दर। अब इसका अर्थ ये दो नंबर यहां से क्लासिफाई किया है इसको स्पष्ट किया है ओ इस ओम को इन्होंने ओम ही सिद्ध किया है ओम प्लस मदर ओम से भाव ओंकार शब्द का है तो यहां भी सिद्ध हो गया अंडरस्टूड हो गया ईसाई ओम यू लिख रखा है देख 103 पृष्ठ पे। अब ये इन कह समझ में ना आए कि ये आऊं आऊं करेंगे इसने हूं यो था ओम मालिक की दया होगी गलती से इसके साथ जुड़ गया इसके साथ जुड़ा होता तो इसने ये काट देते सोहम सोहम शायद रख लेते तो परमात्मा की दया हुई और कोई बात नहीं अगर इसमें भी नहीं होता तो भी परमात्मा कहते हैं कहीं ना कहीं हमने अपनी सच्चाई को रखा ही है कहते हैं चोर चुरावे तुम्बड़ी गाड्डे पानी में वह गाड्डे वह ऊपर आवे सच्चाई छनी ना। अब काल ने वहां कितना दृढ़ कर दिया इन गुरुजियों को कि इस मंत्र की भनक भी नहीं लगनी चाहिए प्राण संगली कितना अनमोल ग्रंथ इसको दिखाएं आपको हैरान रह जाओगे इसमें बहुत क्लियर लिखा है बहुत जगह पर लिखा है अपना आत्मा परमात्मा की सी कृपा होगी ये सिख बच्चे ही इतने सियाने हो गए ये अपने आप इन सदग्रंथों को जानने लगे देखने लगे लाल और लालड़ी की पहचान करने लगे। देखिएगा ये प्राण संगली है पंजाबी वाली वैसी हिंदी वाली में भी एज इट इज है ये है प्राण संगली पटियाला यूनिवर्सिटी वाली है इसके 614 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको प्राण संगली प्रश्नो उत्तर माला मेला पहला यहां क्या लिखा है ये देखिएगा कि अजप्पा जाप सोहम हंसा जान और सुन महल जाका स्थान पूरन पुरुख निरंजन करतार अगम पुरुख का ना ही सुमार है। अच्छा आगे लिखा नाम अमोलक सतगुर ते पाया ओए होए नानक साहब जी कहते हैं ये अनमोल नाम जो है मैंने ये दो अक्षर का सतगुर से मिला और अनहत सुन मही जाय समाया फिर कहते हैं सोहम हंसा जप पर जप माला और जपत जपत दीन दयाला फिर यहां क्या लिखा है इसमें लिखा है आवन जान रह सुख पाई नानक घट घट नदरी आई निरंकार दी अतरद लीला गुरुमति देई ता होए सुहेला। गुरु से प्राप्त होगी कोई बुद्धि देगा भगवान तो ये आसानी से समझ में आएगा। कहते हैं इस मंत्र का करे जो जाप ताको लगे न कोई पाप। इस मंत्र का करे जो जाप ताको लगे न कोई पाप आत्म राम तिस नदरी आवे और रमत राम में जो विचलावे। फिर कहता है ये है उसके देख बहे तुम शुद्ध सोहम हंसा जाको जाप एह जप जप वड्डे प्रताप। सोहम हंसा जपो बिमाला तहां रचिया जहां केवल बाला। बहुत स्थान पर उन्होंने इस मंत्र के जाप करने के लिए प्रेरणा दी है। अपनात्मा इसमें एक और भी गलती हो सकती है कि लिखा होगा ओ हम सोहम जप जप माला फिर भी हम इसको और प्रमाणित करते हैं। एक और सिख बच्चे ने ला के दिया है ये यहाँ पर भी एक और प्रांत संगली है इसमें जो का तो लिखा है ये वही ये है भाई चतर सिंह वाली चतर सिंह जीवन सिंह वाली है अमृतसर से छपी है ये बाजार माई सेवा अमृतसर तो छपी है और इसके प्रश्न नंबर 100 पर लिखा है यहाँ 100 पर लिखा है इन बच्चों ने सिख बच्चों ने लगा के दिए निशान ये सोम हंसा जा का जाप ई जप जप पे होए प्रताप। वो एकदम का न्यू है जो फिर आगे लिखा है सोहम हंसा जप बिन माला यानी श्वासों से सिमरण इसका माला की जरूरत को नहीं और ऊरचिया जय है केवल बाला। और भी बहुत स्थानों पे इन्होंने बताया है। अब यहां लिखा है 125 पे कि नानक सच्चे नाम बिना है सच्चे नाम सतनाम नानक सच्चे नाम बिना सच्चे नाम बिन ना उर्वार न पार यानी सच्चे नाम बिना कुछ भी ना उरली साइड में कोई लाभ ना परली साइड में। सच्चा नाम माने ये सतनाम दो अक्षर का। अपनात्मा यही मंत्र आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिया था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि ओ हम सो हम मंत्र जपिए योग युगतिया धूणी तपिए राम नाम जप कर थिर होई ओ हम सो हम मंत्र दोई नथिंग एल्स। तो ये सतनाम है दो अक्षर का। कहते नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद बिचारी सार शब्द पाया जदलोई आवागमन बौर ना हुई। तो इन महापुरुषों ने स्पष्ट कर दिया है कि ये मंत्र जाप करने से तुम्हें लाभ होगा अन्यथा इसका कोई यूज नहीं। इसके अतिरिक्त कोई भी नाम आप जाप करते हो वो यूजलेस हैं उनका कोई फायदा नहीं जप करो या ना करो। तो सच्चे नाम बिना सतनाम इसको सतनाम भी कहते हैं। तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है कि आप जी को ये खजाना मिल गया जिसको अभी तक छुपा के रखा था कबीर परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था धर्मदास मेरी लाख दोहाई और ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। फिर कहा कि धर्मदास तो मेरी लाख दुहाई ये सार शब्द की तबार न जाई। सार शब्द बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। और फिर कहा कि मूल ज्ञान को तू तब तक छुपा के रखना तब तक छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। इब ये सारे पंथ फेल हो गए क्योंकि इनके द्वारा दी गई साधना सबको पता है और सभी उससे परिचित हैं कि हम कौन सा नाम जाप कर रहे हैं और जाप करना कौन सा चाहिए। और जिन महापुरुषों की दुहाई दिया करते थे कि नानक साहिब जी ने भी ये पांच नाम जाप करे वो भी इसी से मुक्त हुए उसने भी ऐसे जाप किए वो उसी से मुक्त हुए नानक साहिब जी ने कति क्लियर कर रखा कि इन पांच नामों से और इस वाह वाह के शब्द से जन्म मर नहीं मिट सकता। इसके अंदर वाह वाह के शब्द के अंदर लिखा है कि इस वाह वाह करने से कर्म किया ही मिलेगा आपका, जन्म मृत मोक्ष नहीं हो सकता। एक इसमें स्पष्ट किया है कि ये मंत्र है जाप करने का, इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं। तो अब इन महापुरुषों ने एक तरफ तो कहा कि तू मर्दाना ये नाम जाप मत कर, और फिर कहा कि मेरी आत्मा है, मेरा शरीर है, संसार से पार करने का ये पुल है, इसने छुपा के रखना, और इसमें स्पष्ट कर रखा कि ये मंत्र जाप करने से मोक्ष होगा और किसी से नहीं। तो पुण्यात्मा आप तो बालक हो, आपको दोबरी बनाई खीर मिल गई, आपने जरूरत नहीं इतनी सिर में दर्द करने की। इन महापुरुषों की छाती देखो, इन्होंने यहां तक धोखा देकर काल को इस तथ्य को बचा के भी रखा और काल के हाथों भी नहीं पड़ने दिया। अरे ये खुलम खुला डिंडोरा पीटने का दास को परमेश्वर ने आदेश दे दिया, आपका भी कल्याण पूरे विश्व का कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं।
क्या शुभ नाम है जी आपका?
मेरा नाम जितेंद्र सिंह अलूवालिया है।
कहाँ से आए सर आप?
मैं पुणे से आया हूँ, महाराष्ट्र से।
क्या काम करते हैं आप?
मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, फैक्ट्री है मेरी पुणे में। हम लोग जो ट्रेलर्स वगैरह होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, वो बनाते हैं।
संत रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले कौन सी भक्ति करते थे आप?
हमारे घर में शुरू से ही संतों का आना जाना काफी था, तो मैं एक सिख होने के नाते गुरुद्वारे भी जाता था, लेकिन एक संत जी के भी शरण में मैं हमेशा बचपन से रहा हूँ, जो कि शिव जी की भक्ति करवाते थे। मुझे उन्होंने ओम नमो शिवाय नाम दिया हुआ था, और अब मान के चलिए ये जो जीवन है, जब हमने ये ज्ञान सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्राप्त हुआ, तो उसके बाद ये पता चला कि जो जीवन है वो एक सुख और दुख में चलता है। जब हमारे पुण्य कर्म होते हैं तो काफी सुख मिलते हैं, और जैसे ही हमारे पाप कर्म शुरू हो जाते हैं तो दुख की शुरुआत हो जाती है। तो जिन संतों से मैंने वो नाम लिया था, वो नाम की क्या ताकत थी, वो आज मुझे इस ज्ञान से पता चला है उसकी कोई ताकत नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं हर रोज का मेरा नियम ये था कि मैं जब घर से निकलता था गुरुद्वारे जाता था, मत्था टेकता था। वहां से मेरी फैक्ट्री करीब करीब एक घंटे दूर थी। आधे घंटे का सफर मैं सतनाम वाहेगुरु का जाप करता था, और आधे घंटे उसके बाद में मैं ओम नमो शिवाय का जाप करता था। और जब मैं फैक्ट्री पहुंचता था उसके बाद देखता था कि दोनों कोई काम नहीं कर रहे हैं, उल्टा हर रोज मेरा नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है। और एक समय ऐसा आ गया कि मैं टोटल ही स्क्वायर में फंस गया। ऐसा फंसा कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या कर सकता हूं अभी। वो फंसना ऐसा था कि मेरा घर, मेरी फैक्ट्री, सभी कुछ बैंक के ताबे में हो चुकी थी। लोगों का, क्रेडिटर्स का बहुत सारा देना सिर पे कर्ज बन गया। ऐसी हालत हो गई, ऐसी स्थिति हो गई कि ना तो मैं घर में रह पा रहा था और ना मैं फैक्ट्री जा पा रहा था। ऐसी दुविधा में फंसा, तो मैं क्या बताऊं कि मतलब वो दुख, वो समय मैं मतलब बयान नहीं कर सकता कि क्या दुख था। वो बोलते हैं ना, जिस तन लागे सो तन जाने। इतना भयंकर वो समय था, जिसके कारण सिर्फ यही नहीं था कि सिर्फ वो आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, शरीर पूरा खराब हो रहा था। घर वालों को कईयों ने बताया कि इसके ऊपर कई बाहर की चीजें भी कर रखी हैं, जिसके कारण ये शायद पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा। कई संतों ने भी बताया, क्योंकि हमारे घर में संतों का काफी आना जाना रहता था, कईयों ने ये भी बताया कि ये वाकई में ये मेंटल हो जाएगा, ये नहीं रह पाएगा। तो इसके चलते मैंने एक दिन फिर उन संतों के पास गया और उन संतों से जाके मैंने काफी चर्चा की। आखिरी में उन्होंने मुझे ये कह दिया कि ये तो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में तो ये दुख सुख तो चलते हैं, ये तो भुगतने पड़ते हैं। मैं बड़ा तड़फा, मैं आया और अपनी मदर के भाव में लपेट के मैं रोया, बहुत रोया। मैंने बोला मुझे नहीं पता क्या है ये, क्या ब्रह्मांड है और क्या स्थिति है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। मेरे जैसा आदमी जो मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, कभी नॉनवेज नहीं खाया, कभी मैंने किसी को दुख देने की कोशिश नहीं की, और मेरे जैसे आदमी के साथ अगर ऐसा दुख हो है तो इस ब्रह्मांड या जाओ जो भी बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या स्थिति है ये। और वो पुकार जो मेरे हृदय से निकली, जो मेरी आत्मा से निकली, इस परमात्मा ने सुन ली।
संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप?
संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसा आया कि संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य हैं पुणे में ही, मैं गाड़ियां बनाता हूं और वो गाड़ियां चलाते हैं जो हम कंटेनर्स वगैरह बनाते हैं। तो उनके लिए मैंने 2002 में मैं सदगुरु के शरण में आया था, तो 2002 में मुझे पता चला कि उन्होंने कुछ गाड़ियां बनवानी हैं, तो मैं उस ऑर्डर के लिए मैं उनके ऑफिस में गया था। उनका नाम रविंदर जी, रविंदर दास हैं। तो वो मैं उनके ऑफिस में जाके बाहर बैठा हुआ था, इतने में फिर मुझे उन्होंने अंदर बुलाया तो मुझे उन्होंने देखा। मैं करीब करीब 3 साल के बाद उनको मिला था, उसके पहले 3 साल पहले उन्होंने गाड़ियां बनवाई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जितेंद्र जी क्या हो गया, आपका चेहरा एकदम, मतलब आपका पूरा ही रूप रूप बदली हुआ है, क्या हो गया आपको ये? मैंने मतलब वहां पे मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूरी अपनी स्थिति बताई कि मैं किस तरह से फंस चुका हूँ और मेरे साथ क्या क्या बीत रहा है। आज मैं करीब मैं दोपहर के 2-2.5 बजे गया था, उन्होंने मुझे पूरा इस परमात्म ज्ञान का पूरा उन्होंने चीज समझाई हमको। वहां बैठे बैठे रात के 10:30-11 बज गए और मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर कुछ कोई चीज है, ये जो ज्ञान बता रहे हैं इसमें कुछ, मतलब अंदर से आत्मा ने पूरी उस चीज को पकड़ लिया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बात बन जाएगी। क्योंकि इसके पहले भी मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, ना कोई मंदिर छोड़ा, ना कोई मस्जिद छोड़ा, ना कोई संत छोड़ा। हर एक के पास जाके मुझे फैमिली वाले भी ले जाते थे, क्योंकि मेरी तो मेंटली स्थिति इतनी खराब थी कि मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या करूं, तो मुझे हर जगह ले जाते थे। तो जब मुझे ये ज्ञान पता चला तो मुझे लगा कि मैं तो वैसे दुख ही में काफी था, मैं तो अपना दुख ही निवारण करने की कोशिश कर रहा था, ज्ञान को एक साइड में समझ रहा था, लेकिन मुझे ज्यादा ये था कि मेरा दुख निवारण हो जाएगा इससे। मैंने उनसे कहा मुझे पूरा एड्रेस दीजिए सब, मैंने अगले दिन की टिकट की कोशिश की, वो नहीं मिली, उसके अगले दिन की मिली। मैं करोथा आश्रम पहुंच गया, करोथा आश्रम पहुंचने के बाद में जो मुझे सदगुरु के दर्शन हुए और जो मैंने वहां पे सब चीजें समझी, मैं वो दिन गया और ये दिन आया, मैंने पीछे अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा। फिर मेरे साथ बहुत कुछ होता था, जिस दिन मैं ट्रेन में बैठा था उस दिन भी हमारे फैक्ट्री में LPG की पाइप को आग लग गई थी, आग चलते हुए पूरी सिलेंडर की तरफ बढ़ रही थी, सारे वर्कर्स वगैरह बाहर निकल गए थे। और फिर मुझे वहां से फोन आया जब मैं करोथा आश्रम में था कि वो आग एकदम सिलेंडर के पास जाके अपने आप बुझ गई। मैंने सदगुरु के शरण में दंडवत मार के कहा, गुरु जी आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, बहुत मुसीबत है, मैं बहुत दुखी आ रहा था उस समय, मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। परमात्मा ने सिर पे हाथ रख के बोला, बेटा ये आखिरी था, इसके बाद कुछ नहीं होगा, अभी ये आखिरी था बेटा। और मैं आज बताता हूं, वो 2002 और आज 2012 मुझे कुछ कोई हमारे यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, इतना शांत वातावरण कर दिया है आसपास में। क्योंकि ये जब तक हमारे वातावरण शांत नहीं होगा, हम भक्ति क्या करेंगे, हम क्या परमात्मा को पहचानेंगे। हमारे आसपास में आग लगी हो और हम क्या भक्ति कर सकते हैं। इसके लिए परमात्मा ने पूरा शांत कर दिया और पूरी भक्ति करवाई। फिर मुझे समझ में आया कि मेरा दुख जो मेरे लिए वरदान बन गया, तो परमात्मा कहते हैं कि उस सुख के माथे पत्थर पड़ो जिससे नाम हृदय से जाए, और ऐसे दुख के मैं बलियारी जाऊं जो पल पल नाम रटाए। उस नाम मेरे लिए वरदान बन गया। मुझे यहाँ पर आके पता चला कि वो मुझे दुख ही था जो मेरा यहाँ पे वरदान बन गया और मुझे मोक्ष का मार्ग मिल गया। ये भक्ति जो है, ये मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोची थी कि ऐसा भी होता है कि हम ऐसे जीवित में ऐसी भक्ति करते हैं। और ऐसे पर हम तो सोचते थे कोई ऋषि मुनि लोग ही ये सब पा सकते हैं, हम तो एक मनुष्य हैं बस, हमारा तो ऐसा ही गुरुद्वारे में जाना, मंदिरों में जाना, माथा टेकना और ऐसा ही जीवन निकल जाएगा।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिला?
बहुत लाभ हुआ है। जैसे एक तो मैंने आपको अपनी आर्थिक स्थिति का बताया, फिर आर्थिक स्थिति में मैं आपको बता सकता हूं कि ऐसे ऐसे जिसको लोग चमत्कार बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, लेकिन इंसान पे जब दुख होता है ना, उसको समझ में आता है कि वो कष्ट कैसे निकला जाए। अभी हम लोग कंटेनर्स बनाते हैं, 2010 में एक बार ऐसा हो गया कि हमने कुछ 28 गाड़ियों के ऑर्डर्स लिए थे, करीब करीब 3-4 करोड़ का वो माल था पूरी गाड़ियों का, और गाड़ियां बनी और हमने टाटा मोटर्स के पार्किंग में भिजवा दी। उसके बाद में कस्टमर का हमें फोन आया कि गाड़ी आपने 15 फीट 4 इंच बना दी है, जो कि आपने 15 फीट बनानी थी। मेरे पैरों नीचे जमीन निकल गई। मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? बोला नहीं, मैं गाड़ी के पास खड़ा हूं, हमने टेप लगाया हुआ है, हम देख रहे हैं यहां पर। मैं बोला ठीक है, मैं अपनी पूरी टीम को भेजता हूं वहां पे, वो आके चेक कर लेंगे पूरी, हम देखते हैं कहीं क्या प्रॉब्लम है। मैंने सतगुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज से एक उनके बारे में सुना था, उन्होंने बताया था कि उनके घर में उन्होंने जो उनकी खिड़की के ऊपर में एक जाली लगाई थी, तो वो जाली कम थी और बाद में वो जाली बढ़ गई थी। मैंने मन ही मन प्रार्थना की, हे मालिक, अगर आप जाली बढ़ा सकते हो तो मेरी गाड़ी भी 4 इंच छोटी कर दो, मालिक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं यही प्रार्थना करते करते अपने घर से निकला था और फैक्ट्री जा रहा था, और यही प्रार्थना करते जा रहा था। और जब मेरी पूरी टीम वहां पे पहुंची, उन्होंने जब जाके गाड़ियां चेक की, तो मुझे फोन आया कि सर नहीं, बिल्कुल गाड़ियां जो है 15 फीट ही हैं, कोई उसमें बिल्कुल भी ये नहीं है। ये चीज मतलब बताना, किसी को बताएं तो कोई विश्वास ना करे, लेकिन मेरी आत्मा जानती है क्यों मालिक ने गाड़ियां छोटी कर दी थी। जो 15 फीट 4 इंच बनी थी वो मालिक ने 15 फीट कर दी। ये तो मतलब परमात्मा के लिए तो बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत सबसे बड़ी चीजें ये है कि जो मालिक हमें ये मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा ही जब मैं दुखी था तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुखित दिन वो था जिस दिन मुझे अपने बच्चों के फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। आप यकीन नहीं कर सकते, परमात्मा ने मुझे कहां से कहां निकाल दिया। मुझे परमात्मा ने उस समय इतनी मदद की कि मेरे बच्चों ने अपने, जो छोटे छोटे बच्चे अपने पिकी बैंक्स बनाते हैं उसमें पैसे रखते हैं, तो वहां उनकी दादी उनको पैसे दिया करती थी, वो जमा करते थे। एक दिन मुझे मतलब ऐसे लगा कि मैं आज क्या करूं, तो दोनों बेटे छोटे छोटे थे, 8-10 साल का था उस समय, दोनों अपना पिकी बैंक ले आए। मुझे बोलते पापा आप इसमें से हमारी फीस भर दो। मैं क्या बताऊं, मैं क्या
किस हालत में था उस समय, लेकिन इस मालिक ने इतना सुख दिया है, इतना सुख दिया है कि मैं बता नहीं सकता आपको कि मतलब किस किस लोगों के सामने मैंने क्या क्या नहीं किया उस समय, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया इस परमात्मा के सिवा। मैंने कुछ लोगों को पेमेंट देनी थी, ये मालिक ने मुझे कैसे मदद की मैं आपको बताता हूँ। मुझे 78,000 रुपीस देने थे तो मैं दे नहीं पा रहा था, बहुत लोगों का और भी कर्जा था, लेकिन वो कुछ लोग शैतान थे, गड़बड़िया थे, कुछ लोगों को ले आए मेरे सामने, बोलने लगे पेमेंट हमें आज के आज ही चाहिए। मैं बोला पेमेंट है नहीं मेरे पास, मैं दे दूंगा आपको कुछ समय, मैं आदमी खराब नहीं हूं, मेरा समय खराब है आज। तो बोलने लगे नहीं आप 78,000 का चेक बना के दीजिए, हम लेके जाएंगे, कैसे भी आपको पास कराना पड़ेगा। जबरदस्ती उन्होंने मुझसे कहा, मैंने बना के दे दिया। मैंने बोला पास तो होगा नहीं, आप देख लो ले जाओ। बोलते देख लेंगे हम, पास नहीं होगा तो। मैंने बस मालिक के आगे प्रार्थना रखी और वो एक दिन निकला, दो दिन निकला, ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए, ना तो कोई आया ना कुछ। 6 महीने के बाद में मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक लेटर आया, उन्होंने लिखा कि बुना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का 80,000 का चेक आपके अकाउंट में डल गया था और जिसके कारण आपके अकाउंट से 78,000 रुपीज का एक चेक क्लियर होकर चले गया। अभी आप बताइए ये परमात्मा नहीं है तो क्या है ये? परमात्मा ने मेरी उस समय मतलब इतने खतरनाक लोगों से भी मेरी रक्षा की और मेरी इज्जत रखी, सब किया। ये सब खेल वो करता है, लेकिन दुनिया को बताओ तो दुनिया मानती नहीं है, समझती नहीं है। फिर ऐसे ही करके और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारे पूरा घर, फैक्ट्री पूरा बैंक के पास थी, पूरा उन्होंने केस कर रखा था कोर्ट में, पूरे चीजें को उन्होंने पूरा लीलाओं तक ये चल रहा था, लेकिन बस ये परमात्मा का खेल था कि परमात्मा ने जैसे ही शरण में आया हूँ, शरण में आते ही परमात्मा ने पूरा कुछ भी कर सकते हैं मालिक। मालिक ने जब मैं शरण में आया हूँ उसके बाद में इतना मार्केट में काम दिलवा दिया कि हमें कहीं बाहर जाके काम कर लेके आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लोग आके कहते थे हमारी गाड़ी बना दो, हमारी गाड़ी बना दो, और इतना काम आया जिसके कारण हमने बैंक से बात की, बैंक से बात करके उनको बताया कि हम ऐसे ऐसे करके आपको देंगे, बैंक वाले भी मान गए, और धीरे 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 करते हुए हर एक चीज ठीक हो गई। आज परमात्मा ने बहुत ही सुख दिए हैं, और अब मैं मतलब माइनस से भी नीचे था वो, वहां से मुझे आज यहाँ परमात्मा ने अपने चरण कमलों में रखा हुआ है। मतलब इतना सुख दिया है कि मैं आपको, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि जिससे मैं आपको उस डिस्क्राइब करके बता सकूं।
किशनर जी, भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि अभी आप देखिए, मेरे जैसा आदमी जो कभी किसी को दुख नहीं देता था, नॉन वेज नहीं खाता था, ड्रिंक्स नहीं पीता था, और सुबह शाम हमारे घर में संतों का आना जाना रहता था, और गुरुद्वारे जाना था, मंदिर जाता था, सब करता था, मेरे साथ क्या हो गया? तो ये क्या है, यहाँ पे बस यही है कि हम अपने सब कर्मों के ऊपर चल रहे हैं। हमारे जितने पुण्य होंगे उतने हमको बस अच्छा उस समय मौज होगी, छाया रहेगी। जैसे हमारे पाप कर्म स्टार्ट हो जाएंगे, हमें धूप मिलेगी, हमें सेक मिलेगा, इतनी हीट मिलेगी आप अपने आप को नहीं पहचान पाओगे। तो हमें आज जो सदगुरु रामपाल जी महाराज ऑथेंटिक प्रूफ्स के साथ में हर ग्रंथ को बता रहे हैं, हर शास्त्रों को बता रहे हैं, हमें किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना करना है कि आज जो वो टीवी चैनल्स पे बता रहे हैं, जो उनके सीडीज बनी हुई आप वो देख सकते हो, उनकी किताबें वो देख सकते हैं, हमें किसी को मत पूछिए, आप हमारा भी मत सुनिए ना। लेकिन इतनी विनती है कि आप ये सिर्फ अपना थोड़ा सा समय निकाल के और इस चीज पे गौर करिए, और फिर 110% आपको बताते हैं कि इसमें कोई शंका नहीं मिलेगी आपको, कोई डाउट्स नहीं रहेंगे, हर चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, और आपको आप परमात्मा पा सकते हैं, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इतना गारंटेड मार्ग है ये।
जितेंद्र जी, आप भी आप बता रहे थे कि आप सतनाम वाहेगुरु जी का जाप करते थे, तो ये सतनाम वाहेगुरु जी क्या है?
सतनाम वाहेगुरु जी मुझे सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरणों में आने के बाद में इसका मतलब समझा कि मैंने कितना जाप किया उसका, और उसका असली में मतलब ये है कि जब गुरु नानक देव जी ने को गुरु नानक देव जी को जब कबीर साहिब जी सचखंड लेके गए थे, और वहां पे जाने के बाद में गुरु नानक देव जी ने ये कहा था कि मुझे यहीं रहने दो, मुझे वापस मत भेजो उस काल के लोग में, तो कबीर साहिब जी ने बोला था नहीं, आपको हम विधि बताएंगे, आपको विधि बताना है, मैं वहां पे आपको मिलूंगा, गुरु रूप में मिलूंगा, आपको सतनाम दूंगा, फिर आपको फिर मोक्ष प्राप्त होगा और आप आ सकते हैं। फिर गुरु नानक देव जी ने जब वहां से आए थे वापस, और उन्होंने उदासी स्टार्ट की थी, पहली उदासी जैसे उनकी काशी की थी, तो उन्होंने यही कहा था कि वही गुरु मिले और मुझे सतनाम दे, सतनाम वही गुरु, मतलब वही गुरु मिले मुझे और वही सतनाम दे मुझे जिससे कि मेरा मोक्ष हो। असली में इसका मतलब ये कोई नाम वगैरह नहीं है, ये गुरु नानक देव जी से मुख से निकले हुए ये शब्द हैं जिससे कि वो मोक्ष प्राप्त कर सकते थे उसके द्वारा। ये कोई नाम जपने का नहीं है, ये वो गुरु को ढूंढ रहे थे, उस सच्चे गुरु को ढूंढ रहे थे जिससे कि उनको सतनाम प्राप्त हो सके।
तो क्या आपका मानना है कि कबीर परमात्मा ने, गुरु नानक जी जो थे उनके पूज्य गुरुदेव कोई परमात्मा ही थे?
बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है, उनको बही नदी के ऊपर आके मिले हैं, आज हर सिख जानता है बही नदी की साखी क्या थी, सब जानते हैं बही नदी के ऊपर आके जिंदा रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में उनको मिले थे, और इसी रूप में कबीर साहिब जी हर संतों को मिले हैं, जिनको भी उस समय वो गरीबदास जी को लेके गए या धर्मदास जी को लेके गए, जिनको भी मिले हैं वो जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं, और गुरु नानक देव जी को भी उसी रूप में वो मिले थे, और उसी रूप में उन्होंने उनके साथ में वार्तालाप की थी, और ये साक्षात मतलब चीजें लिखित में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर फिर डाउट करने जाए तो फिर बहुत सारी बातें मनमुखी करें तो कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिकली तो जब तक हम नहीं देखेंगे तो कोई भी मानेगा नहीं, इसलिए ये ऑथेंटिक प्रूफ्स हैं, लिखित में हैं, सब चीजें सामने दिखाई देती हैं, और देख के भी अगर कोई अनजान पुना करे तो फिर तो वो परमात्मा पाना ही नहीं चाहता, वो लोगों को भटकाना चाहता है। और मैंने एक चीज और देखी है इस जीवन में कि जो खास करके हमारे धर्म के सारे धर्म के ठेकेदार हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा काम बिगाड़ा हुआ है समाज का, क्योंकि ये अपनी ही उल्लू सीधा करने के लिए भगत समाज को भिका देते हैं, उनको गलत रास्ते पे लगा देते हैं, बस उनको ये बोल देंगे नहीं ये ऐसा ही बता रहे हैं वो वैसा ही बता रहे हैं। असलियत में जो भी भक्ति करना चाहता है, जो परमात्मा पाना चाहता है, आज हम पढ़े लिखे हैं, आज हमको कोई भेका नहीं सकता, आज हम अपने आंखों से देखें ना, हम समझ सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं, हमको जरूरत नहीं इतने मोटे मोटे ग्रंथ खोल के पढ़ना। आप संत रामपाल जी महाराज की सत्संग आता है वो सुनिएगा, बिल्कुल निष्पक्ष होकर सुनिएगा, और फिर देखिएगा आप हर एक चीज, हर ग्रंथ उन्होंने सामने रखा हुआ है, हम देख सकते हैं ना, और देख के भी अनदेखा करें तो फिर हम भक्ति नहीं करना चाहते। इसके लिए अगर हम थोड़ी सी इतनी हमारी सिर्फ हर पूरे भगत समाज के आगे प्रार्थना है कि थोड़ी सी अपना समय निकालें और इस ज्ञान को सुने, खुद समझें, किसी की जरूरत नहीं है इसमें कोई भी किसी से समझने की, ये ज्ञान अपने आप समझ में आ जाता है। अगर हम कोशिश करेंगे, हम परमात्मा पाना चाहते हैं तो हम इस सत्संग को, सदगुरु जी के सत्संग को सुन के और उनकी किताब पढ़ के हर हालत में 100% इस ज्ञान को समझ सकते हैं। तो सभी चीजें देख के, हम आज पढ़े लिखे हैं, हम देख के समझ सकते हैं ना कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, नो डाउट, कोई भी डाउट रहता है नहीं, 1% भी डाउट नहीं रहता मन के अंदर में कि कबीर इज नॉट गॉड, ऐसा बिल्कुल भी कभी भी शंका आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रंथ हैं और हम ग्रंथों को देख के समझ सकते हैं उसको। तो इसके लिए अगर हम परमात्मा पाना चाहते हैं तो अगर हम अपने ग्रंथों को ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, तो हमें हर हालत में ये यकीन हो जाएगा कि कबीर इज गॉड।
क्या आप मानते हैं कि जो भक्ति आज आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज आपको दे रहे हैं, क्या वही भक्ति गुरु नानक देव जी ने भी की थी?
बिल्कुल बिल्कुल 100% वही भक्ति की थी, क्योंकि जब पूरा ये प्रकरण हमारे सामने संत रामपाल जी महाराज ने अपने ही ग्रंथों से निकाल के सामने रख दिया है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं रहा ना। और वो जो दो अक्षर का नाम है सतनाम जो है, वो संत रामपाल जी महाराज ने हमें गुरु नानक देव जी की जो प्राण संगली है उसके अंदर में भी लिखित में बता दिया। जब बाला और मर्दाना के साथ वो लंका देखने की हट कर रहे थे और उनको दिखाने के लिए लेके जा रहे थे, उस समय भी उन्होंने वही नाम जपा था, उसके बारे में भी पूरा बताया गया है, लिखित में है, सामने है। इसके लिए गुरु नानक देव जी ने जो भक्ति की थी आज 100% हम वही कर रहे हैं। और गुरु नानक देव जी का अगर मोक्ष हुआ है तो 100% हमारा भी होगा।
जितेंद्र जी, और कुछ आप भक्त समाज को या अपने भाई बहनों को कुछ संदेश देना चाहते हैं?
मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और बहुत छोटा सा जीवन है। हम ज्ञान से ये समझ में आया है कि जब सतयुग था तो 1,00,000 वर्ष मनुष्य का जीवन होता था, और आज 100 भी नहीं रहा है अभी तो। और अगर इतना सा छोटा सा जीवन है और इतने से छोटे से जीवन में अगर हमें परमात्मा मिल जाए, तो मतलब इससे बढ़कर चीज कोई नहीं हो सकती। क्योंकि हमने भी सुना है और हमारे बाप दादाओं ने भी बताया है कि कई ऋषि मुनि कई तप कर करके अपना शरीर गला गए, कईयों ने क्या क्या नहीं किया और परमात्मा नहीं पाया। ये गोल्डन अभी युग चल रहा है जिसमें कि परमात्मा ने बहुत दया की है हम सभी आत्माओं पे, सब बच्चों पे, तो हमें ये इसका पूर्णता से लाभ उठाना चाहिए। ये वक्त बार बार नहीं आता है, जबकि तत्वदर्शी संत और ये हमें मनुष्य जीवन और ये सब चीजें एक ही साथ हो जाना, ये कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि ये एक ही बार ऐसे बड़ा मुश्किल से मौका मिलता है और इसका पूरे भगत समाज को लाभ उठाना चाहिए। ये बहुत ही मतलब बहुत ही दुर्लभ चीज है जो इस सृष्टि में होती है और ये अभी चल रही है, क्योंकि वो भी लिखित में है। जो पिछली पीढ़ी की में होना है वो भी लिखित में है और वो हो रहा है अभी, कि पिछली पीढ़ी में ही सब अभी तरेंगे। परमात्मा में पूरा लिखित में बताया हुआ है, जैसे 5555 जब कलयुग बीत जाए तब कोई महापुरुष तारण को आए, तो ये जो 5555 है वो भी प्रूफ करके बता दिया सदगुरु जी ने कि 1997 में वो टाइम पूरा हुआ है और तब से ये ज्ञान एकदम से ऊपर बढ़ा है। और सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ये सभी भक्तों सभी भगत समाज पे बहुत इस मालिक ने दया की है कि सभी को ये नाम उपदेश भी दे रहे हैं, जो कि मतलब आप यकीन करें कि बड़े बड़े ऋषि होके चले गए जिनको ये नाम प्राप्त नहीं हुआ था। ऋषियों को तो छोड़ो, अभी अगर मीडिया के सामने मैं ये बोलूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी ये नाम नहीं है तो बड़ा अचंभा लगेगा आपको, लेकिन ये हकीकत है। हम ज्ञान समझेंगे तो ये समझ में आ जाती है बात। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई अलग नहीं है, वो भी हमारे ही देवी देवता हैं, लेकिन वो क्या स्थिति में, सब चीजें हमको समझना पड़ेगा। तो ज्ञान समझ के हम हर एक चीज समझ सकते हैं कि ये नाम मिलने में और परमात्मा पाने में कितना मतलब कितना आसान है अगर हम उस चीज को समझ के करेंगे। तो
जितेंद्र जी, आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने वर्तमान के सभी धर्म गुरुओं को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया हुआ है, तो आपको कैसा लगता है?
बहुत ही अच्छी बात है अगर यही हमारे सभी धर्मों के जो ये ऊपर में बैठे हुए हैं अगर ये सच को सामने ले आए, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल कुछ भी समय नहीं लगेगा परमात्मा को हम सबको यहाँ से सतलोक लेके जाने के लिए। सिर्फ यही कुछ लोग हैं जो कि मतलब ये बिल्कुल अपना मैं तो कहूंगा कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए इन्होंने ये हट बना के रखा हुआ है, जो कि भगत समाज के सामने ये सच्चाई को आना नहीं देने चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने गलत ज्ञान दे चुके हैं, ये इनके ज्ञान रिकॉर्ड हो चुके हैं, शास्त्रों में इनकी जो किताबें हैं उसमें बिल्कुल शास्त्रों के उलट ज्ञान है इनका, तो इसलिए अभी ये फंस चुके हैं और ये ज्ञान को इसके लिए आगे आने नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि अगर हर आदमी के पास में क्या हुआ कि भक्ति करने के लिए समय नहीं है, समय नहीं है तो सत्संग नहीं देखते हैं, कि कोई ग्रंथ को पढ़ते नहीं है, बस जो हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं, कहीं घंटी बजा दी, कहीं अगरबत्ती लगा दी, कहीं कुछ कर लिया, वो कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा समय निकालें और इस ज्ञान को समझने की कोशिश करें तो ये जितने भी संत बैठे हैं आज, अपने आप को संत कहते हैं, इनका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा और सच्चाई उस परमात्मा की सबके दिल में उतर जाएगी और हम सब मोक्ष प्राप्त कर लेंगे।
धन्यवाद भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।
सत साहब जी, बीर जी,
क्या शुभ नाम है जी आप जी का?
मेरा नाम है जी वैद गुरमुख सिंह, पिंड ते डाक बिलासपुर, जिला मोगा, पंजाब का वासी हाँ मैं जी।
सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
पहले जी मैं सच्चा सौदा सिरसा वाले संत सतनाम सिंह तो नाम लिया, उन्होंने साथ भी बहुत नजदीक रहा पर उसे कोई शांति नहीं आई। उस तो बाद होर परंपरावां जो नानक सर वगैरा संत दरबारा सिंह जी लोपो वाले जां होर भी बहुत सारे महात्मा के पास गया पर किसी थां तो कुछ ना मिलिया। फिर मैं अमृत छाके ज्ञानी मेवा सिंह जी जो मैंबर धर्म प्रचार कमेटी सन उस वेले उन्हां दे साथ आप भी छकिया, लोगों नूं भी छकाया और धर्म प्रचार किया।
तो सर अभी आप बता रहे थे कि आपने डेरा सच्चा सौदा सिरसा से संसा सतनाम जी से नाम उपदेश लिया था, तो संसा सतनाम जी ने आपको क्या मंत्र जाप करने के लिए दिया था?
उन्होंने दिता सी जी सत पुरुष निरंकार अकाल मूर्त अविनाशी शब्द स्वरूपी राम।
तो ये जो मंत्र आप बता रहे हैं, इस मंत्र का जाप आपने कितने दिन तक किया?
21 साल तक जी, सन 73 तो 94 तक।
सर 21 साल तक आपने इस मंत्र का जाप किया, आपको क्या लाभ मिला इसका?
कुछ भी लाभ नहीं मिला जी।
फिर सर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए?
वो ऐसे बात है जी कि मैं इधर किसी कामकार दे विच आया ते उधरों आउंदा आउंदा मैनू अखबार मिल गया। अखबार पढ़ के मैं 6 अक्तूबर 2004 नू सत्संग सुनन आ गया, तां उत्थे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का बंदी छोड़ जी का सत्संग सुनिया और उत्थों मैनू पता लग्या जो कि मैंने पहले खोज करी सी कि जो गुरु नानक देव जी ने नाम जपया, नाम जपण तो बगैर कदे पूर्ण मुक्ति नहीं हो सकती। नाम एक बीज है, नाम जे बीज जैसा कि असी कोई चीज बीजांगे उही सानू फल मिलूगा। जैसे कि फरीद साहब जी कहंदे है कि फरीदा लब्बे दाख बजौरियां किक्कर बीजे जट, हंडे उन्न कतायंदा पैंदा लोड़े पट। कि जट बीजदा तां हैगा किक्करां पल पालदा है बजौर देखदियां दाखां, उधरों भेडां दी उन्न कतदा पर पहनण वास्ते पालदा रेशम। सो इस करके जो नाम है वह पूर्ण संत गुरु तो मिलता है और पूर्ण नाम ही पूर्ण बीज है, नाम नाल ही पूर्ण मुक्ति हो सकती है और सतलोक जाया जा सकता। फिर आके मैंने जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो 6 अक्तूबर 2004 वाले दिन प्रथम मंत्र प्राप्त किया और फिर 4 महीने बाद दूसरा और फिर सतगुरु रामपाल जी तो मतलब 8 दिसंबर 2011 दास नू और दास दे गुर भाई लाभ सिंह नू दोहां नू सानू सारनाम मिलिया और सानू पूर्ण मुक्ति दी आस होई। ते बिल्कुल क्लीयर बात है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हन और क्योंकि इन्हां दे उत्ते उह सारियां बातां टुकदियां जो गुरु ग्रंथ साहिब दे विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी कह के गए है, जिवें कि सत पुरुष जन जाणिया सतगुर तिसका नाओ तिन ही के संग सिख उधरे नानक हर गुण गाओ।